फैज अपने मन में आयु को सबक सिखाने का सोचकर वापस अपने रूम में आ गया था। उसने एक वार्ड बॉय को पैसे देकर अपने फेवर में कर लिया था। फैज ने वार्ड बॉय को आयु पर नजर रखने का काम दिया था। उसे अपना काम सौंपने के बाद वो आराम कर रहा था। वहीं आयु अयान के साथ ऑपरेशन थिएटर में चली गई थी। आज उनकी बैक टू बैक दो सर्जरी होनी थी और दोनों काफी क्रिटिकल भी थीं। लगभग शाम के 7 बजे के करीब अयान और आयु अपने सर्जरी से फ्री होकर केबिन में बैठे थे। दोनों ही काफी थके हुए लग रहे थे। अयान ने आयु से कहा, डॉक्टर सिद्धि उस पेशेंट को मॉनिटर करेगी जिसकी सर्जरी सुबह हुई थी, और तुम शाम वाले को। जिसकी सर्जरी शाम को हुई है उसकी 2 दिन बाद एक और सर्जरी है और मुझे उसे प्लान करना होगा। पता नहीं उसकी बॉडी एक साथ इतना ट्रीटमेंट एक्सेप्ट कर पाएगी भी या नहीं। आयु से बात करते हुए भी अयान की नज़रें फाइल पर टिकी हुई थीं। ओह माय गॉड, सब कुछ कितना क्रिटिकल है ना। मुझे तो उसे देखकर ही दया आ रही थी। इतनी कम उम्र में ब्रेन में 2-3 क्लॉट बनना आम बात नहीं होती। काश हम एक ही सर्जरी में उसके सारे क्लॉट्स निकाल पाते, आयु ने अफसोस भरे भाव में कहा। अयान ने अपनी नज़रें फाइल से हटाईं और आयु की तरफ देखकर कहा, अगर सारे क्लॉट्स ब्रेन के एक हिस्से में बने होते तो हम ऐसा कर सकते थे, पर तुम्हें तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री पता ही है। खैर, इस बारे में बात नहीं करते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 1 घंटे हैं। बताओ खाना खाने कहाँ चलना है? ऐसा करते हैं, हॉस्पिटल में ही कैंटीन से कुछ खा लेते हैं, बाहर जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो ठीक से खाना खा सकें। ऊपर से सर्जरी के चक्कर में पूरा दिन उन्होंने सिर्फ हल्का फुल्का खाकर गुजारा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार, मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, आयु ने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, जिस पर अयान हल्का सा हंस दिया। अयान अपनी जगह से खड़ा हुआ और आयु के पास आकर बोला, चलो आज तुम्हें कैंटीन का स्पेशल खाना खिलाया जाए। वैसे तो ये 5-स्टार रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन श्याम चाचा कई बार रिक्वेस्ट करने पर अलग खाना बना देते हैं। मेरी उनसे खास बनती है तो वो मुझे कभी मना नहीं करते। क्या सच में? आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं ढाबे स्टाइल में कुछ खाऊं। तुम नहीं जानते, आरफ के साथ रहते हुए मैं हेल्दी खाकर बोर चुकी हूं, आयु ने खुश होकर जवाब दिया। वो दोनों उठे ही थे कि सामने से आवाज़ आती, तुम्हारे पास बोर होने का ऑप्शन नहीं है मिसेस खुराना। वो आरफ था जो अयान के केबिन के आगे हाथ बांधे खड़ा था और आयु को तिरछी निगाहों से घूर कर देख रहा था। आरफ आयु के पास चलकर आया और सिर हिलाकर कहा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें यहाँ काम है इसलिए हॉस्पिटल में रात को रुकोगी। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों यहाँ काम करने के लिए नहीं बल्कि मेरी बुराई करने के लिए रुके हो। अयान ने तुरंत जवाब में कहा, आप हमें गलत समझ रहे हो भाई, हम क्यों आपकी बुराई करेंगे? वैसे भी इसमें गलत क्या है, ना आप खुद जंक खाते हो ना दूसरों को खाने देते हो। अब आप आ गए हो तो लगता है मुझे अकेले ही खाना खाने जाना होगा। अपनी बात कहकर अयान वहां से जाने लगा। तभी आयु ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। आयु ने अयान का हाथ छोड़ते हुए कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, हम साथ में ही खाना खाएंगे और इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ में खाना खाने से। बोलते हुए आयु ने आरफ की तरफ देखा ताकि वो अयान को उसके साथ डिनर करने की परमिशन दे दे। आरफ ने अयान की तरफ देखकर कहा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर साक्षी को प्रॉब्लम हो सकती है। खैर छोड़ो, तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। साक्षी का नाम सुनकर अयान और आयु दोनों ही हैरान थे। पिछली बार जो भी हुआ था उसके बाद से साक्षी उन दोनों से ही नाराज थी। आयु और अयान में से कोई आरफ से कुछ पूछता उससे पहले ही उसने जवाब में कहा, अब ज्यादा मत सोचो, मुझे पता है तुम दोनों को यही लगता है कि मैं किसी काम का नहीं और तुम दोनों के बारे में नहीं सोचता, पर यह गलत है। देखो, मैंने साक्षी को यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम दोनों ही अपनी अपनी बात रखकर एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सको। चलो कैंटीन एरिया में चलते हैं और आई होप कि तुम दोनों इस बार समझदारी से काम लोगे। अयान ने उसकी बात पर हामी भरी। साक्षी के वहां आने पर वो खुश हो गया। कैंटीन की तरफ जाते हुए अयान ने आरफ से कहा, हम दोनों तो समझदारी से काम ले लेंगे, पर प्लीज आप कुछ मत बोलना, आप ही की वजह से वो हम दोनों से ज्यादा नाराज हो गई थी। हाँ, ये तुम्हारे फैलाए रायते ही होते हैं जो हमें समेटने पड़ते हैं, आयु ने आइस रोल करके कहा। आरफ ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसके फेस पर ईविल स्माइल थी। वो तीनों कैंटीन एरिया में चेयर्स अरेंज करके बैठ गए थे। दूसरी तरफ साक्षी जल्दी जल्दी अपने घर पर टिफिन पैक कर रही थी। उसे देखकर मंथन हैरान था। एक्चुअली हॉस्पिटल जाने से पहले आरफ ने साक्षी को कॉल किया था कि वो सारा खाना लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाए। मंथन उसकी हेल्प कर रहा था। उसे ये सब करने में काफी इरिटेशन फील हो रही थी, तो उसने चिढ़ते हुए कहा, दी आप आखिर कर क्या रही हैं? आपने आयु और आरफ को डिनर के लिए बुलाया था और अब उनके लिए बनाया हुआ खाना पैक कर रही हैं। मैं तुम्हारी इरिटेशन अच्छे से समझ सकती हूँ मंथन, क्योंकि इस वक्त मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। आयु बिजी है इसलिए आरफ ने हॉस्पिटल में खाना लाने के लिए कहा है। ये बात वो पहले से जानता था कि आयु आज यहाँ नहीं आ पाएगी। उसने मुझसे जानबूझकर इतना सारा खाना बनवाया। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे भगवान ने इसे इस धरती पर दूसरों को परेशान करने के लिए ही भेजा है। साक्षी ने गुस्से में कहा। पूरी बात जानने के बाद मंथन का गुस्सा दूर हो गया था और उसके फेस पर हल्की स्माइल आ गई। साक्षी को इस तरह परेशान सिर्फ आरव ही कर सकता था। सारा खाना पैक हो जाने के बाद मंथन ने कहा, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता हूँ। आरव को आपके हाथ का बना खाना खाना था, इसलिए उन्होंने आपसे इतना कुछ बनवाया है। साक्षी ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, इस लड़के के खाने पीने में बहुत नखरे हैं। खाना अच्छा भी होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए और बाहर का भी नहीं होना चाहिए। पता नहीं आखिर चाहता क्या है ये। तुम दो मिनट रुको, मैं थोड़ा टचअप करके आ जाती हूँ। मंथन को रुकने का बोलकर साक्षी रूम में गई और लगभग 5 मिनट बाद वापस आई। उसके हाथ में उसका बैग था और वो अच्छे से तैयार थी। उसके बाद मंथन और साक्षी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वो दोनों वहां तक पहुंचे तब तक अयान, आयु और आरव भी कैंटीन में आकर बैठ चुके थे। उन्हें वहां बैठे हुए लगभग 10 मिनट हुए ही थे कि वो दोनों भी वहां पहुंच गए। ये डिनर आयु और आरव के साथ ही होने वाला था, लेकिन जब साक्षी ने अयान को वहां देखा तो वो आरव की तरफ तिरछी निगाहों से देखने लगी। क्या, मुझे ऐसे मत देखो, तुम भी तो अपने भाई को लेकर आई हो, तो मैं भी अपने भाई को लेकर आ गया, आरव ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। फिर उसने अयान की तरफ देखा जो हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। आरव ने अयान की तरफ सिर हिलाकर कहा, मुझे ऐसे मत देखो, मैंने इसे बता दिया है कि तुम मेरे भाई हो, बताना ही पड़ा, तुम्हारा रिश्ता लेकर जो गया था। लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए भाई, क्योंकि आप आज मुझे कुछ ज्यादा ही एम्बैरस करने वाले हो, अयान ने जवाब दिया। वो उठकर जाने को हुआ तभी आरव ने उसे वापस बिठा दिया। साक्षी और मंथन भी उनके पास में बैठ चुके थे। आयु ने देखा कि वो काफी सारा खाना लेकर आए हैं, तो उसने साक्षी की तरफ देखकर पूछा, चलो अच्छा है, हमें बाहर से ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा और आप पहले ही खाना ले आए हैं। कौन से होटल से लेकर आई हैं दी आपले खाना? इसका जवाब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बेहतर तरीके से देगा आयु, साक्षी ने जवाब दिया और खाना अनपैक करने लगी।
साक्षी के जवाब से आयु समझ गई थी कि जरूर आरव ने साक्षी से इतना सारा खाना बनवाया होगा। उसने आरव की तरफ देखकर कहा, तुम सच में बहुत बुरे हो।
तुमसे तो कम ही बुरा हूँ, सारे दिन कामों में लगी रहती हो, 2 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास मेरे लिए, आरव ने आईज रोल करके कहा।
हाँ, डॉक्टर की लाइफ थोड़ी बिजी होती है तो कहाँ से टाइम मिलेगा, मंथन ने आयु का फेवर करते हुए कहा। अचानक आरव के दिमाग में कुछ सूझा। उसने साक्षी की तरफ देखकर ईविल स्माइल करते हुए कहा, साक्षी भूल जाओ कि मैंने अपने भाई के लिए तुम्हें अप्रोच किया था, इस लड़के से बिल्कुल शादी मत करना वरना ये तुम्हें 1 मिनट का भी टाइम नहीं देगा। आरव प्लीज भगवान के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप खाना खाओ, यहाँ तुम सबका काम बिगाड़ रहे हो, आयु ने प्लीडिंग वे में कहा। आयु के कहने पर आरव चुप हो गया था और वो चुपचाप खाना खा रहे थे। डिनर खत्म होते होते आयु और आयु को जो 1 घंटे का ब्रेक मिला था उसका टाइम भी खत्म हो चुका था। खाना खत्म करते ही अयान आयु से बोला, वैसे तो हमें सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक मिला था, लेकिन तुम भाई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती हो, मैं देख लूंगा। अरे नहीं, तुम अकेले सब देखोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ में, आयु ने जवाब में कहा। आयु के रोकने पर भी अयान नहीं माना, उसने नामे सिर हिलाकर कहा, मैंने कहा ना मैं देख लूंगा, ज्यादा टाइम मत लगाना, 1/2 घंटे में आ जाना, उससे ज्यादा मैनेज नहीं कर पाऊंगा मैं। उन सबको बाय बोलने के बाद अयान जाने लगा। जाने से पहले उसने एक नज़र साक्षी की तरफ देखा और फिर वहां से चला गया। अयान के जाने के बाद आरव ने साक्षी से कहा, देखा मेरा भाई दिल का कितना अच्छा है, ये मत सोचना वो मेरी तरह है, वो तुम्हें समझेगा भी और सब जानने के बाद प्यार भी करेगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अयान को वो सब बता सकूं और ये समझा सकूं कि जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बेहतर होगा कि तुम मेरा नाम उसके साथ मत जोड़ो, यहाँ मैं जिस काम के लिए आई हूँ सिर्फ वही करूँगी और वापस दिल्ली चली जाऊँगी, साक्षी ने सख्ती से जवाब दिया। आयु ने उस वक्त आरव और साक्षी से कुछ नहीं पूछा, वो जानती थी कि जो बात साक्षी अयान से नहीं करना चाहती वो उसके साथ क्यों करेगी। आयु ने साक्षी की तरफ देखा और कहा, थैंक यू सो मच दी, आप आज यहाँ डिनर के लिए आई, इस खाने के लिए भी थैंक्स। तुम्हें थैंक यू नहीं सॉरी बोलना चाहिए, साक्षी ने जवाब दिया। प्रॉमिस करो मुझे कि आगे से कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगी और आरव का साथ दोगी, इससे डिवोर्स लेने के बारे में तो सोचना भी मत। हाँ, बाकी लड़ने झगड़ने की परमिशन है तुम्हें, क्योंकि ये कोई सीधा इंसान नहीं है, बिना बहस किए इसके साथ नहीं रहा जा सकता, बोलते हुए साक्षी के फेस पर हल्की स्माइल थी। जो भी है प्यार तो करता हूँ ना मैं इससे, लेकिन इसके पास मेरे लिए टाइम ही कहा है, आरव ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। आयु ने साक्षी की बात पर हामी भरी और मुस्कुराते हुए उसे हक कर लिया। साक्षी के मानने पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो ये भी जानती थी कि ये सब आरव की वजह से ही हुआ है। आई प्रॉमिस कि मैं इससे कभी अलग नहीं होंगी, आयु ने स्माइल करते हुए कहा। आयु की बात सुनकर फैज के चेहरे के भाव सर्द हो गए, जो उनसे कुछ टेबल दूर बैठा था। उसकी पीठ आयु और आरव की तरफ थी, लेकिन वो उनकी बातें अच्छे से सुन पा रहा था।